श्रोताओं, आप सभी का मार्गदर्शक कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है। इन दिनों में हम यूहन्ना रचित सुसमाचार में अंकित सात चिन्ह नामक विषय पर अध्ययन कर रहे हैं और मुझे पूरी आशा है कि इस कार्यक्रम से आपको बहुत आशीष प्राप्त होगी। तो आइए कार्यक्रम में आगे बढ़ते हुए सुनते हैं एक मधुर गीत।
प्रभु तेरा प्यार सारे जहां में हो, प्रभु तेरा नाम सारे दिलों में हो, प्रभु तेरा प्यार सारे जहां में हो, प्रभु तेरा नाम सारे बदल ही गया जीवन, कांटों से भरी राहें थी मेरी, तेरे शरण में हुआ मैं पावन, तेरे आने से तुझे पाने से बदल ही गया जीवन, कांटों से भरी राहें थी मेरी, तेरे शरण में हुआ मैं पावन, मैं जीऊंगा तेरे लिए, जान भी दूंगा तेरे लिए,
प्रभु तेरा प्यार सारे जहां में हो, प्रभु तेरा नाम सारे दिलों में हो, भटकों को तेरी राह दिखलाऊं, अपनों के लिए तूने क्या सहा दर्द मैं ये समझाऊं, वादा ये रहा भूले भटकों को तेरी राह दिखलाऊं, अपनों के लिए तूने क्या सहा दर्द मैं ये समझाऊं, जीऊंगा तेरे लिए, प्रभु तेरा नाम सारे दिलों में हो, प्रभु तेरा प्यार सारे जहां में हो, प्रभु तेरा नाम सारे दिलों में हो, मैं जीऊंगा तेरे लिए, जान
listening friends.
Namaskar shrota mitro.
What a special delight and joy for us that you have joined us again.
Ye kya hi khas aanand aur khushi ki baat hai ki aap ek bar fir hamare saath hain.
Also welcome to those of you whom I have joined this broadcast for the first time.
Aur saath hi unka bhi swagat hai jo pehli bar is prasaran ko sun rahe hain.
If God is blessing this broadcast in your life,
यदि परमेश्वर इस प्रसारण के द्वारा आपके जीवन को आशीषित कर रहा है,
यू माइट वांट टू कॉल अ फ्रेंड एंड टेल देम टू लिसन,
तो आप अपने किसी मित्र को भी सुनने के लिए कह सकते हैं।
यू माइट ब्रिंग अ ग्रुप ऑफ पीपल टुगेदर एंड लिसन टू दिस ब्रॉडकास्ट टुगेदर,
आप कुछ लोगों को इकट्ठा करके मिलकर भी इस कार्यक्रम को सुन सकते हैं।
इफ यू आर ज्वाइनिंग दिस ब्रॉडकास्ट फॉर द फर्स्ट टाइम, वी हैव जस्ट स्टार्टेड अ स्टडी of the seven signs or miracles of Jesus.
यदि आप पहली बार इन प्रसारणों में सम्मिलित हुए हैं तो हमने यीशु के सात चमत्कारों या चिन्हों का अध्ययन प्रारंभ किया है.
They are found in the Gospel of John.
ये यूहन्ना रचित सुसमाचार में मिलते हैं.
Bible believing Christians have spent their time and effort defending the importance of believing in Jesus.
Bible पर विश्वास रखने वाले मसीहियों ने यीशु पर विश्वास रखने के महत्व की रक्षा में अपना समय और कोशिशें दी हैं.
Why?
क्यों?
Because atheists need to have God and his word presented to them.
क्योंकि नास्तिकों को जरूरत है कि परमेश्वर और उसका वचन उन तक पहुंचाया जाए.
This statement was right long ago and still right today.
ये वाक्य बहुत पहले भी सही था और आज भी सही है.
As Christians, we do not just believe that there is a God.
मसीही होते हुए हम केवल यही विश्वास नहीं करते कि एक परमेश्वर है.
We believe in a personal God.
हम एक व्यक्तिगत परमेश्वर में विश्वास रखते हैं.
Not only that.
केवल इतना ही नहीं.
But we believe that our God wants to enter into a relationship with us.
परंतु हम ये भी विश्वास करते हैं कि हमारा परमेश्वर हमारे साथ एक रिश्ता रखना चाहता है.
We believe that God left the splendor of heaven and became a man.
हम विश्वास करते हैं कि परमेश्वर स्वर्ग का प्रताप छोड़कर मनुष्य बन गया.
Why?
क्यों?
That he may reveal to us what he is like.
ताकि वो हम पर प्रकट करे कि वो कैसा है.
Not only that.
केवल इतना ही नहीं.
But he also demonstrated his power over nature and creation.
परंतु उसने प्रकृति और सृष्टि पर अपनी शक्ति भी प्रकट की.
Not only that.
केवल इतना ही नहीं.
But he proved beyond a shadow of doubt that he will exercise his power on behalf of those who will have faith in him.
परंतु उसने शक की जरा सी छाया से भी परे ये प्रमाणित किया कि वो उनके लिए अपनी शक्ति का इस्तेमाल करेगा जो उस पर विश्वास करेंगे.
Today we are going to see an example of God's power in response to faith.
आज हम विश्वास के प्रत्युत्तर में परमेश्वर की शक्ति का एक उदाहरण देखेंगे.
Jesus spoke about the kind of faith that moves mountains.
यीशु ने ऐसे विश्वास के बारे में कहा जो पर्वतों को हिला सकता है.
A faith that brings God's supernatural power in direct collision with the natural order.
ऐसा विश्वास जो परमेश्वर की अलौकिक शक्ति का सीधा प्राकृतिक व्यवस्था के साथ टकराव करवा सकता है.
This faith is not based on my efforts, but it is a gift of God.
ये विश्वास मेरी कोशिशों पर आधारित नहीं है, परंतु ये परमेश्वर का वरदान है.
Real biblical faith is from God.
असल बाइबल अनुसार विश्वास परमेश्वर की ओर से है.
Real biblical faith is always based on what God has agreed to do.
असल बाइबल अनुसार विश्वास हमेशा उस पर टिका होता है जो परमेश्वर ने करने का वादा किया है.
Whatever God says, God will do.
परमेश्वर जो भी कहता है वो करेगा.
God never gives faith unless he is willing to respond to that faith.
परमेश्वर कभी तब तक विश्वास नहीं देता जब तक वो उस विश्वास का प्रत्युत्तर देने के लिए तैयार नहीं है।
Biblical faith always presupposes a promise.
बाइबल अनुसार विश्वास में हमेशा उसके साथ एक प्रतिज्ञा है।
Because God always keeps His word.
क्योंकि परमेश्वर हमेशा अपना वादा पूरा करता है।
Faith may also be based on the known mercy of God.
विश्वास परमेश्वर की प्रकट दया पर भी आधारित हो सकता है।
Faith may be based upon what we know of the nature of God.
विश्वास इस बात पर भी आधारित हो सकता है जो हम परमेश्वर के स्वभाव के बारे में जानते हैं।
And in today's message, the Apostle John gives us an example of faith.
आज के संदेश में प्रेरित यूहन्ना हमें विश्वास का एक उदाहरण देता है।
Let me remind you of what I said in our last broadcast.
मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ जो मैंने अपने पिछले प्रसारण में बताया था।
Each of these seven signs from the Gospel of John has a spiritual significance.
यूहन्ना रचित सुसमाचार के इन सात चिन्हों में से प्रत्येक का एक आत्मिक महत्व है।
In the first sign of changing water into wine,
पानी को दाखरस में बदलने के पहले चिन्ह में,
Jesus revealed His glory and the disciples believed in Him.
यीशु ने अपनी महिमा प्रकट की और शिष्यों ने उस पर विश्वास किया.
In this second sign that we will look at today,
इस दूसरे चिन्ह में जिस पर आज हम गौर करेंगे,
The spiritual significance is that this nobleman and his entire household believed in Jesus Christ.
आत्मिक महत्व यह है कि इस कुलीन मनुष्य और इसके पूरे घराने ने यीशु पर विश्वास किया।
Turn with me please to the Gospel of John, chapter 4, beginning at verse 43.
कृपया मेरे साथ खोलिए यूहन्ना रचित सुसमाचार चार अध्याय और इसके 43 पद से प्रारंभ करते हुए।
Here is a man who belongs to King Herod's court.
यहाँ एक व्यक्ति है जो राजा हेरोदेस का राज कर्मचारी है।
He comes to Jesus asking him to go with him from Canaan to Capernaum.
वो यीशु के पास आकर उसे काना से कफरनहूम चलने के लिए कहता है।
This was a distance of about 40 kilometers.
ये करीबन 40 किलोमीटर की दूरी थी।
The reason he wanted him to go with him is to heal his son who is at the point of death.
उसको यीशु को अपने साथ चलने के लिए कहने का कारण ये था कि उसका पुत्र जो कि अंतिम सांसें गिर रहा था, यीशु आकर उसे चंगा करे।
After Jesus rebukes the father of the sick boy, Jesus heals the boy by remote control.
यीशु लड़के के पिता को डांटने के बाद उसके पुत्र को वहीं से ही चंगा कर देता है।
This royal officer in the king's palace comes to Jesus first out of desperation.
राजा के दरबार का ये शाही अफसर पहले तो निराशा के कारण यीशु के पास आया।
Because he only knew Jesus by reputation.
क्योंकि वो यीशु को मात्र उसकी प्रतिष्ठा की वजह से जानता था।
The officer did not know Jesus personally.
ये अधिकारी यीशु को व्यक्तिगत रूप से नहीं जानता था।
Nor did he believe in him as the Messiah.
ना उसने मसीह मानकर उस पर विश्वास किया था।
But by the end of the narrative, we see not only the officer, but his entire household became believers in the Lord Jesus Christ.
परंतु इस भाग के अंत तक आते आते हम देखते हैं कि न केवल वो अधिकारी बल्कि उसका पूरा घराना प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके विश्वासी बन गया।
What is the object of all miracles?
सब चमत्कारों का मकसद क्या है?
The object of all miracles is belief in the only Lord and Savior Jesus Christ.
सभी चमत्कारों का मकसद है उस एकमात्र प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह पर विश्वास।
It is very clear from this miracle that there is a progression of faith.
यहाँ इस चमत्कार से ये स्पष्ट होता है कि वहाँ विश्वास की प्रगति चल रही है।
First we see a flickering faith.
सबसे पहले हम एक टिमटिमाते विश्वास को देखते हैं।
Secondly we see a flame of faith.
दूसरा हम विश्वास की लपट को देखते हैं।
Then thirdly we see the fire of faith.
फिर तीसरा हम विश्वास की आग को देखते हैं।
The initial flickering of faith rested upon the report of others.
शुरुआती टिमटिमाता विश्वास दूसरों से सुनी बातों पर आधारित था।
The nobleman believed what others have said about Jesus.
उस कुलीन मनुष्य ने जो उसने दूसरों से यीशु के बारे में सुना था उस पर विश्वास किया।
In many ways, that's how you and I begin our faith journey.
बहुत तरह से आप और मैं भी ऐसे ही अपनी विश्वास यात्रा प्रारंभ करते हैं।
Someone introduces us to the Lord.
कोई प्रभु से हमारा परिचय कराता है।
Someone says, "Come and see."
कोई कहता है, आकर तो देखो।
Someone says, "Let me tell you about what happened to me."
कोई कहता है, मैं आपको बताता हूँ मेरे साथ क्या हुआ।
Someone says, "Jesus forgave my sins."
कोई बताता है, यीशु ने मेरे पापों को क्षमा कर दिया।
Jesus saved me from the punishment of my sins.
यीशु ने मुझे मेरे पापों के दंड से बचा लिया.
And he can do the same for you.
और वो आपके लिए भी ऐसा ही कर सकता है.
So we come to Christ with a flickering of faith burning within us.
तो हम हमारे अंदर टिमटिमाते विश्वास के साथ मसीह के पास आते हैं.
We don't understand a lot of things.
हमें ज्यादा बातों की समझ नहीं है.
We don't comprehend all truth.
हम पूरे सत्य को नहीं समझते.
But a spark has been lit.
परंतु एक चिंगारी जल चुकी है.
This may be happening with some of you, my dear listeners.
मेरे प्रिय श्रोताओं, आप में से कुछ के साथ भी शायद ऐसा ही हो रहा होगा.
You are listening to these broadcasts and a flickering of faith has been lit in your heart.
आप इन प्रसारणों को सुन रहे हैं और आपके अंदर विश्वास का टिमटिमाना प्रारंभ हो चुका है.
Let me give you an illustration.
मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ.
There were a group of passengers on a vessel that was steaming along a river on a foggy day.
यात्रियों का एक समूह एक धुंध भरे दिन एक नाव पर यात्रा कर रहा था जो बहुत तेज रफ्तार से आगे बढ़ रही थी.
Some of the passengers became very angry.
कुछ यात्री बहुत क्रोधित हो गए.
Because in spite of the heavy fog, the boat was going full steam ahead.
क्योंकि गहरी धुंध होते हुए भी नाव पूरी रफ्तार से चल रही थी.
Finally, they went to the first officer and complained.
अंततः वो पहले अधिकारी के पास गए और इस पर आपत्ति जताई.
The first officer replied with a smile on his face.
चेहरे पर एक मुस्कान के साथ उस अधिकारी ने उत्तर दिया.
Oh, don't worry.
ओ घबराइए नहीं.
The fog lies low. But the captain is high above it and he sees where we're going.
धुंध नीचे नीचे है परंतु कप्तान इससे ऊंचे स्थान पर बैठा है और उसे पता है हम कहां जा रहे हैं.
That is the flickering of faith.
यह है विश्वास का टिमटिमाना.
When we don't understand.
जब हम समझते नहीं हैं.
When we don't know.
जब हमें पता नहीं होता है.
But still we throw ourselves at the mercy of the captain of our life.
परंतु फिर भी हम खुद को अपने जीवन के कप्तान की दया पर छोड़ देते हैं.
That is the nobleman's flickering of faith.
यही है उस कुलीन मनुष्य का टिमटिमाता विश्वास.
The nobleman did not know that he needed the healing of his heart.
वो कुलीन मनुष्य ये नहीं जानता था कि उसे अपने दिल की चंगाई की आवश्यकता है.
The nobleman did not know that he needed the saving of his soul.
वो कुलीन मनुष्य ये नहीं जानता था कि उसे अपनी आत्मा के उद्धार की जरूरत है.
The nobleman did not know that he is talking to the savior of the world.
वो कुलीन मनुष्य नहीं जानता था कि वो जगत के उद्धारकर्ता से बात कर रहा था.
His faith was very narrow in its scope.
उसका विश्वास अपने विस्तार में बहुत तंग था.
His faith was short in its range.
उसका विश्वास अपनी पहुंच में छोटा था.
And his faith was limited in its perspective.
और उसका विश्वास अपने नजरिए में सीमित था.
But he only had a flickering of faith.
परंतु उसके पास केवल टिमटिमाता विश्वास ही था.
Some of you may be in this stage this very day.
आज के दिन आप में से भी कई बिल्कुल इसी दशा में होंगे.
You have seen how the lives of others have been changed.
आपने देखा है कि दूसरों के जीवन कैसे बदल गए.
You know about Jesus by reputation.
आप यीशु को उसकी प्रतिष्ठा के कारण जानते हैं.
You know that he is more than just a religious leader.
आप जानते हैं कि वो मात्र एक धार्मिक अगुए से कहीं बढ़कर है.
More than just a teacher.
एक शिक्षक से कहीं बढ़कर.
More than just a prophet.
एक भविष्यवक्ता से कहीं बढ़कर.
More than just a healer.
एक चंगाई देने वाले से कहीं बढ़कर.
And more than just a name to call upon when you are in need.
और आपकी जरूरत के समय में पुकारने के लिए एक नाम से कहीं बढ़कर.
Because Jesus can ignite it to be a flame.
क्योंकि यीशु इसे जलाकर लपट बना सकता है.
This nobleman's faith was so feeble that he limited the power of Jesus to his local presence.
इस कुलीन मनुष्य का विश्वास इतना कमजोर था कि उसने यीशु की शक्ति को उसकी स्थानीय उपस्थिति तक सीमित समझा.
He said,
उसने कहा,
Come down before my child dies.
आ इससे पहले कि मेरा पुत्र मर जाए.
How many people do you know who think like this man?
आपके विचार में कितने लोग इस व्यक्ति की तरह सोचते हैं?
They have made up their minds about what Jesus can or cannot do.
उन्होंने अपना मन बना लिया है कि यीशु क्या कर सकता है और क्या नहीं कर सकता.
सम ऑफ यू हैव कंडीशनड योर माइंड्स एज टू हाउ जीसस कैन वर्क.
आप में से कईयों ने अपने मन को इस बारे में अनुकूलित कर लिया है कि यीशु कैसे कार्य कर सकता है.
यू मे हैव डिसाइडेड दैट अनलेस अ पर्सन डज सर्टन थिंग्स और बिलीव सर्टन थिंग्स.
शायद आपने सोच लिया है कि जब तक कोई व्यक्ति कुछ खास कार्य नहीं करता या कुछ विशेष बातों पर विश्वास नहीं करता.
God cannot act.
तब तक परमेश्वर कुछ नहीं कर सकता.
But I want you to notice verse 47.
पर मैं चाहता हूं कि आप 47 पद पर ध्यान दें.
This man sought Jesus.
इस पुरुष ने यीशु को खोजा.
Let us read it.
आइए पढ़ते हैं. जब उसने सुना कि यीशु यहूदिया से गलील में आया हुआ है, तो वह उसके पास गया और उससे निवेदन करने लगा कि चल कर मेरे पुत्र को चंगा कर दे, क्योंकि वह मरने पर था.
He did not say to Jesus that the boy is of noble birth.
उसने यीशु से ये नहीं कहा कि लड़का अच्छे घर में पैदा हुआ.
He did not say to Jesus that he is a good boy.
उसने यीशु से ये नहीं कहा कि लड़का बहुत अच्छा है.
But he said to him that the boy is at the point of death.
परंतु उसने यीशु से इतना ही कहा कि उसका पुत्र मरने वाला है.
This man knew enough to know that his extremity was his reason for the urgency.
ये पुरुष इतना जानता था कि उसका परम संकट ही उसकी अति आवश्यकता का कारण था.
This is how David prayed.
दाऊद ने इस प्रकार से प्रार्थना की.
He prayed, Lord, pardon my iniquity.
उसने प्रार्थना की, प्रभु मेरे अपराध को क्षमा कर.
This is the prayer of desperation.
ये अति आवश्यकता की प्रार्थना है.
He did not pray, Lord, pardon the iniquity that others caused me to commit.
उसने ये प्रार्थना नहीं की, प्रभु मेरे उस अपराध को क्षमा कर जो दूसरों ने मुझसे करवाया.
Or, Lord, pardon the iniquity that was excusable and unavoidable and just totally out of my control.
या प्रभु मेरे उस अपराध को क्षमा कर जो होना ही था और जो रोका नहीं जा सकता था और मेरे नियंत्रण से बाहर था.
Or, Lord, pardon my iniquity which is not as bad as the iniquity of so and so.
या प्रभु मेरे अपराध को क्षमा कर जो उतना बुरा नहीं है जितना फलाने फलाने का है.
No.
नहीं.
David said, Lord, pardon my iniquity.
दाऊद ने कहा, प्रभु मेरे अपराध को क्षमा कर.
This is the key to unlocking the door of God's mercy.
ये है कुंजी परमेश्वर की दया का द्वार खोलने की.
First we see a flickering faith.
सबसे पहले हम एक टिमटिमाते विश्वास को देखते हैं.
I want you to tune into the next program.
मैं चाहता हूं कि आप अगले कार्यक्रम को भी सुने.
Because I want to show you how to ignite the fire of faith in your life.
क्योंकि मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि आप अपने जीवन में विश्वास की आग कैसे जला सकते हैं.
Until then, I wish you God's richest blessing.
तब तक मैं आपके लिए परमेश्वर की उत्तम आशीष की कामना करता हूं.
Thank you.
आशा है श्रोता कि आज के संदेश से आपको आशीष मिली है। यदि आप जीवित परमेश्वर या उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के विषय में अधिक जानना चाहते हैं, तो हमसे तुरंत संपर्क करें। और हाँ श्रोताओं, हम आपको उपहार स्वरूप एक पुस्तक भेज रहे हैं। यदि आप इसे प्राप्त करना चाहते हैं, तो तुरंत हमें इस पते पर संपर्क करें। हमारा पता है कार्यक्रम मार्गदर्शक, पोस्ट बॉक्स नंबर 317 लखनऊ 226001 उत्तर प्रदेश। पता एक बार फिर से सुन लीजिए, कार्यक्रम मार्गदर्शक, पोस्ट बॉक्स नंबर 317 लखनऊ 226001 उत्तर प्रदेश। और हाँ, अब आप हमसे ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है md.hindi@twr.in। एक बार फिर से सुन लीजिए, md.hindi@twr.in। तो अगले कार्यक्रम में आपसे फिर भेंट होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, परमेश्वर आपको आशीष दे।